Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورة المؤمنون کی تفسیر پڑھ رہے ہیں قرآن کی جلد نمبر 6 سے، اور اس میں ہم نے ان آیات جو ابھی تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ مکمل پڑھ لیا تھا اور خلاصہ تفسیر کل کی کلاس میں شروع کر لی تھی اور تقریباً آدھا پڑھ لیا تھا اس کو بھی. تو خلاصہ تفسیر سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا تھا نا کہ ثم انکم یوم القیامتی تبعثون، تو اس کے ترجمے میں اور پھر آگے جو بریکٹس میں تفسیر ہوتی ہے حضرت لکھتے ہیں کہ پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. دوبارہ دو ہے نا، یعنی ایک بارہ تو دنیا کی زندگی میں تم زندہ کر دیے گئے تھے، جو پروسیس پہلے ہم نے بتا دیا تمہیں کہ ایسے ایسے ہوتا ہے، پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے سیکنڈ ٹائم. اور جس طرح ہم نے تم کو ابتداءً وجود عطا فرمایا، یہ تفسیراً لکھ رہے ہیں بریکٹس کے اندر، کہ جس طرح ہم نے تم کو ابتداءً وجود عطا فرمایا تھا اسی طرح تمہاری بقا کا سامان بھی کیا. ٹھیک ہے، تو اب بقا کا سامان جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس کا پھر ترجمہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، کہ ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان. ٹھیک ہے، طرائق کا ترجمہ سیدھا سیدھا یہاں پر آسمان سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور پھر اس کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جن میں ملائکہ کے آمد و رفت کے لیے راہیں ہیں، طرائق یعنی راستے راہیں بنائے، کہ اس سے تمہاری بھی بعض مصلحتیں متعلق ہیں یا متعلق ہیں، جڑی ہوئی ہیں تمہاری مصلحتیں، تمہارے فائدے کی چیزیں، تمہارے صلح کی چیزیں. صلح کہتے ہیں کسی چیز کا صحیح ہو جانا، تو تمہارے معاملات صحیح ہوتے ہیں فرشتوں کے آنے سے. ٹھیک ہے، اب فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی رحمت لے کر کے بھی آتے ہیں، فیض لے کر کے آتے ہیں. رحمت کے لیے ایک دوسرا نام جو ہے وہ فیض، انوارات و تجلیات لے کر کے آتے ہیں، تو اس سے ہماری روحانی حالت بہتر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے فرشتے آ کر کے بادلوں کو نچوڑ کر کے بارش برساتے ہیں، تو اس سے ہماری جسمانی حالت بہتر ہوتی ہے. تو فرشتوں کے آنے سے جو ہے نا وہ ہماری روحانی جسمانی مصلحتیں، صلح یعنی اچھائی، معاملے کا اچھا ہو جانا، یہ صلح جو ہے وہ اس سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نہ بھیجیں ہمارے معاملات جسمانی اور روحانی دونوں کے دونوں خراب ہو جائیں. پھر فرماتے ہیں اور ہم مخلوق کی مصلحتوں سے بے خبر نہ تھے. وما كنا عن الخلق غافلين، کہ ہماری مخلوق کو کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی. جیسے کوئی اچھا امپلائر ہوتا ہے، وہ کسی کو جاب دیتا ہے نا اپنی کمپنی کے اندر، تو وہ اس کو پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ میڈیکل کوریج بھی دیتا ہے، है ना भाई। भाई ये तो नहीं कि तुमको हम आखिर में तनख्वाह दे देंगे महीने के और बस तुम हमारा काम करो और हमें तुम्हारी कोई कर्ज नहीं है, तुम बीमार पड़ो, सच्चे हो, तुम्हें कोई और जरूरत पड़े, वी डोंट केयर। ऐसा नहीं होता, बल्कि अच्छा एम्प्लॉयर दुनिया दुनिया के अंदर भी हेल्थ कवरेज देता है, एजुकेशन कवरेज देता है और दूसरे जो है वो इंतजाम करता है। रेंट का भी कुछ और अच्छे होते हैं तो वो तो बाकायदा घर का रेंट भी देते हैं। यहाँ भी तुम्हें कहीं रहना भी तो होगा ना, तो रेंट भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी उसकी। खाली तनख्वाह जो है वो हम तुम्हें नहीं देंगे आखिर में, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो के हर चीज का इंतजाम करने वाले हैं, तो वो कैसे गाफिल रह सकते हैं। ठीक है, तो मसलहतों से अल्लाह ताला बेखबर नहीं थे, ठीक है ना, और वो सब कुछ इंतजाम करते रहते हैं। बल्कि हर मखलूक को मसालह व हुक्म की रियायत करके बनाया, ठीक है ना। यानी तुमको बनाया भी हमने ऐसा है कि ये चीजें जो है ना वो तुम इस्तेमाल कर सको, तुम फायदा उठा सको इन चीजों से, ठीक है। तुम्हारी तख्लीक ही हमने ऐसी बनाई है, फिर उसके ऊपर तुमने हम फिर हम तुम्हारी जरूरियात तुम्हें मुहैया भी करते हैं, राइट। तो फरमाते हैं कि तो अनजलना मिन अस्समा इमाम बिकदरिन व अस्कन्ना हु फिल अर्द, के हमने इंसान की बका और नशोनुमा के लिए आसमान से मुनासिब मकदार के साथ पानी बरसाया। ठीक है, हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह कोई 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 जियोलॉजिस्ट तो नहीं है ना, कोई साइंटिस्ट तो नहीं है ना, तो इस वजह से हजरत ने आसान सी इसकी, बल्कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह, ये तर्जुमा तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो कि और भी पिछले जमाने के पिछली नस्ल जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने सादा सादा पानी बरसाया, यानी बारिश के पानी बरसाने की बात हजरत ने फरमा दी, जिससे कि बात पूरी हो जाती है। ठीक है, कल जो सारी तफसील थी कि जी वाटर वाज डिलीवर्ड फ्रॉम आउटसाइड इन द कॉस्मोस, तो भाई ये सारी तफसीलात जो है ये तो हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साइंसी तरक्की और उसके तहत खुलती चली जाएंगी, लेकिन इसका ताल्लुक हमारी रूहानी तरक्की वगैरह के साथ कोई खास नहीं होता ना। ठीक है, तो बस ये तर्जुमे जो है वो वक्त के अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से कर दिए जाते हैं। तो थानवी रहमतुल्लाह ने इसका तर्जुमा किया कि मिकदार यानी मुनासिब मकदार के साथ पानी बरसाया। ठीक है, फिर हमने उसको मुद्दत तक यानी एक खास मुअय्यना मुद्दत तक जमीन में ठहराया, चुनाचे कुछ पानी तो जमीन के ऊपर रहता है और कुछ अंदर उतर जाता है जो वक्तन फवक्तन निकलता रहता है। ठीक है, वाटर रिजर्वायर्स एक्वायर्स के शक्ल में अंदर मौजूद रहता है और हम जिस तरह उसके बरसाने पर कादिर हैं, ठीक है, यानी ऊपर से जमीन में उतारने पर जिस तरह हम कादिर थे और हमने करके दिखाया इस बात को, उसी तरह उस पानी के मादूम कर देने पर भी कादिर हैं। ठीक है, कि मादूम यानी अदम, अदम का मतलब होता है नॉन एग्जिस्टेंट, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं कि वो खत्म ही हो जाए तुम्हारे पास से, भी कादिर हैं। ख्वा हवा हवा की तरफ मुस्तहील करके तहयुल उसको जो है वो तहलील कर दे बुखारात की शक्ल में, सारा का सारा पानी जो है वो वेपर्स बन करके ऊपर पहुंच जाए। अब हम तकते रहे बादलों को भी, बादल है ऊपर, सारा का सारा पानी जमीन से जो है ना इवेपोरेट होकर के बादल बन गया, है ना। अल्लाह ताला के लिए काम बहुत आसान है। ख्वा इतनी दूर जमीन की गहराई में उतार कर के आलात के जरिए से ना निकाल सकें, ठीक है, ना निकाल सको तुम, मगर हमने बाकी रखा हुआ है उसको, ठीक है ना। यानी तुम्हारी पहुंच से दूर करना अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है इस पानी, ठीक है, लगा यानी वह इन अला जहाबिन भी लकादिर, ठीक है, तुम्हारी पहुंच से हम दूर उसको कर सकते हैं। अब कोई अकल का अंधा, कोई जिसकी कि बिल्कुल ही यानी अकल जो है ना वो बॉक्स से बाहर नहीं निकल सकती है, तो वो कहेगा अच्छा अगर बादल बना दिए ना तो हम जो है ना आर्टिफिशियल रेन जो है वो हमारे हमने ऐसे मिसाइल्स, छोटे छोटे ऐसे मिसाइल्स जो हैं वो डेवलप कर लिए हैं, हम मिसाइल्स को जो है ना वो मारेंगे बादल के अंदर और उन बादलों से जो है ना वो बारिश होनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो वही बात हो गई ना, जैसे कि फिरौन, है ना, फिरौन ने भी क्या कहा था मूसा अलैहिस्सलाम को, कि नहीं, फिरौन ने कहा था अपने वजीर हामान को कि एक बड़ी सी इमारत बनाओ, मैं उस इमारत के ऊपर चढ़ूंगा ताकि मैं मूसा के खुदा को देख सकूं, है ना, बेवकूफ़ी की बात। मूसा के खुदा को देखने के लिए जो है वो एक स्काई स्क्रेपर बनाने की कोशिश कर रहा था, तो ये इसी किस्म की बात होती है, जिसकी अकल जो होती है वो बिल्कुल ही घास चरने चली जाती है मुकम्मल तौर पर, तो ऐसी बातें करता है। ठीक है, तो भाई अल्लाह ताला जो है वो अगर आपसे दूर करना चाहेंगे ना, तो फिर आपकी ये वाले मिसाइल तो कोई काम नहीं कर सकेंगे जो कि आर्टिफिशियल रेन बरसाते हैं, राइट। अगर अगर यानी ये बात कि अल्लाह को नहीं पता कि आप जो है वो आर्टिफिशियल रेन बरसा सकते हैं, तो भाई जब दूर करना होगा तो ऐसा दूर करेंगे कि आपके ये मिसाइल भी वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये कोई थोड़ी कि हाथ पकड़ करके, हाथ बढ़ा कर खाली नहीं पकड़ सकते, बल्कि आपके मिसाइल भी वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो मिसाइल नहीं होते, वो छोटे छोटे रॉकेट्स होते हैं जिसके जरिए इस तरह आर्टिफिशियल ब्रेन पर साथ। एनीवे, तो ख्वाह हवा की तरफ मुस्तहिल करके, ख्वाह इतनी दूर जमीन की गहराई निकाल, फिर हमने इस पानी के जरिए से बाग पैदा किए। फ अनशअना लकुम बिही जन्नात मिन नखील, ठीक है, खजूरों के और अंगूरों के। वह अनाब, कल आप में से किसी ने बड़ी अच्छी बात करी थी कि जी जो नखील खजूर के बाग होते हैं वो ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पे पानी बहुत ही ज्यादा जमीन की सरफेस से बहुत नीचे अवेलेबल होता है, और अनाब जो है वो वहाँ उन जगहों पर पैदा होते हैं जहाँ पे पानी जो है ना वो बहुत यानी ऊपर अवेलेबल होता है, करीब अवेलेबल होता है, क्योंकि ये अनाब जो है ये इनके अंदर अल्लाह ताला ने जूस वाला सिस्टम रखा, तो पानी की ज्यादा मकदार जो है ये जमीन से जज्ब करते हैं, जबकि खजूर जो है उसके अंदर जूस वाला सिस्टम नहीं रखा, उसके अंदर जो है वो यानी शुगर वाला सिस्टम रखा, फ्रक्टोस वाला सिस्टम रखा, कि वो सारी चीजें तवानाई जो है वो जज्ब करके फिर उसको जो है वो शुगर में कन्वर्ट कन्वर्ट कर देता है आपके लिए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर। तो वो पानी की शक्ल में खजूर में जूस मौजूद नहीं होता, जबकि अनाब के अंदर बाकायदा पानी ही की शक्ल में जूसेस मौजूद होते हैं। तो दोनों तरह के अल्लाह ताला ने उस एक्सट्रीम का भी जिक्र कर दिया और इस एक्सट्रीम का भी जिक्र कर दिया फलों में से। फिर हमने इस पानी के जरिए से बाग पैदा किया। अच्छा, तुम्हारे तुम्हारे वास्ते, राइट, खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिजा के वास्ते, उन खजूरों अंगूरों में बकसरत मेवे भी हैं, जबकि उनको ताजा ताजा खाया जाए तो मेवा समझा जाता है, उनमें से जो बचाकर खुश करके रख लिया जाता है उसको बतौर गिजा के खाते भी हो। तो हम लोग जो है वो उर्दू जुबान में अब मेवे का लफ्ज जो है वो ड्राई फ्रूट्स के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हजरत ने जो है वो फ्रेश फ्रूट्स जो है वो उनके लिए मेवे का लफ्ज इस्तेमाल किया, और ड्राई फ्रूट्स जो है वो उनको अलग कैटेगरी के अंदर रखा कि बतौर गजा के उन ड्राई फ्रूट्स को खाते हो। और उसी पानी से एक जैतून का दरख्त भी हमने पैदा किया, ठीक है, जो कि तूरे सीना सीना में बकसरत पैदा होता है। सूरह मरियम के अंदर ये जो सूरह मरियम अभी जहन में आया तो कुरान के अपने ही फायदे होते हैं, कभी रहने दें। अच्छा, तो जैतून का दरख्त भी हमने पैदा किया जो कि तूरे सीना में बकसरत पैदा होता है, जो उगता है तेल लिए हुए, ठीक है, उसके अंदर जो है वो जूस नहीं है बल्कि उसके अंदर ऑयल है, तेल, और खाने वालों के लिए सालन लिए हुए, यानी उसके फल से दोनों फवायद हासिल होते हैं। सालन का लफ्ज हजरत ने इस्तेमाल किया यहाँ पर सिबग के लिए, सालन जो होता है एक मजा ऐड करने के लिए जो चीज बनाई जाती है ना उसको सालन कह देते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप जो है वो मसाले वगैरह भी डाल सकते हैं, उसके अंदर आप जो है वो रेलिश यानी दूसरी चीजें भी डाल सकते हैं, विनेगर, ट्रीटेड क्यूकम्बर या और चीजें, तो ये सारी चीजें जो है ना वो आप जैतून के जरिए से बना सकते हैं, यानी उसके फल से दोनों फायदे हासिल होते हैं, ख्वाह रोशन करने के और मालिश करने के काम में लाओ, यानी उससे चिराग भी बाकायदा जलाया जा सकता है, यानी 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 कंबस्टेबल ऑयल होता है ये जो कि जल भी सकता है और मालिश करने के काम में भी आता है, ख्वाह उसमें रोटी डुबो कर खाओ। ये सामान मस्कूरा पानी और नबातात में से था, ये सामान मस्कूर पानी और नबातात से था। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने तुम्हारी मसलहतों के लिए ये चीजें बनाई,
जो ये किस ये इंसान को ये सारी चीजें जो अल्लाह ताला ने दी हैं ये किस ड्यूरेशन के लिए दी हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी में जो उसके चंद रोजा औकात गुजरते हैं, लम्हात गुजरते हैं ना, यानी कुछ हंड्रेड्स ऑफ डेज हो गए या थाउजेंड ऑफ डेज हो गए जिसके अंदर उसने इस दुनिया में रहता है ना, ये सारी नेमतें अल्लाह ताला ने उस जिंदगी के लिए दी है ना। इस दुनिया में आने से पहले भी इंसान को इसका कोई फायदा नहीं था, और इस दुनिया से जाने के बाद भी जब कब्र में चला जाएगा तो वहां पे जाके जैतून नहीं खाएगा, वहां पे जाकर के जो है वो नखील और अनाब नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, गोश्त और मवेशी नहीं खाएगा, कब्र के अंदर कुछ नहीं है सब कुछ, है ना। हमारी जिंदगी तो हजारों हजारों बल्कि बल्कि हकीकत तो ये है कि हमारी जिंदगी तो अनलिमिटेड है ना। इब्तिदा तो हमारी है लेकिन इंतहा हमारी कोई नहीं, यानी कोई ऐसा वक्त नहीं है कि जिसके अंदर इंसान को जो अल्लाह ताला बिल्कुल खत्म कर देंगे, है ना। हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी है इंसान की, राइट। हाँ, पहले हम नहीं थे, अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, उसके बाद से हम हैं, राइट। तो ये यानी कितनी लंबी जिंदगी है हम तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। उस हजारों लाखों करोड़ों साल की जिंदगी जो उससे भी ज्यादा होगी, उसमें से इतना छोटा सा एक पीरियड जो कि इस दुनिया की जिंदगी में हमने गुजारना है, राइट, उसके लिए अल्लाह ताला ने ये सारी की सारी नेमतें रखी हैं, ठीक है ना। तो अब तसव्वुर करें कि जो परवरदिगार इस इंसान की इतनी छोटी सी जिंदगी के लिए इतना कुछ करता है, इतना कुछ करता है, तो वो बाकी जिंदगी के लिए क्या करता होगा, है ना भाई। इसको मैथमेटिकली जो है ना हम यानी प्रोपोर्शन करके इसको समझ लें थोड़ा सा, तो हमारे शायद समझ में आ जाए कि हमारे परवरदिगार हमारे ऊपर कितना रहीम और कितना करीम है और कितना देने वाला है, कितना उसने अपने ना खजानों के दहाने हमारे ऊपर खोले हुए हैं। इतनी निक्की सी जिंदगी, पंजाबी में कहते हैं निक्की 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 सी, छोटी छोटी सी है, बारीक, बहुत ही यानी कोई इसकी हैसियत ही नहीं है ना। करोड़ों साल के अंदर 60 साल की कोई हैसियत बनती है? कोई 60 साल की क्या हैसियत है भाई, वो तो नजर भी नहीं आए 60 साल किसी करोड़ों साल के मुकाबले में। उसके लिए ये सब कुछ, ठीक है ना। तो बाद की जिंदगी के लिए क्या होगा, इसी वजह से जो अल्लाह ताला की मान के जिंदगी गुजारते हैं ना इस दुनिया में, हाँ शर्त लगा दी, शर्त लगा दी कि इस दुनिया में मान के रहोगे ना तो फिर तुम्हारी जो आगे की अरबा अरब साल की जिंदगी है ना, उसमें मैं तुम्हारी मर्जियां पूरी करूंगा। तो अब जो अल्लाह वाले होते हैं यानी मुत्तकी और नेक जिंदगी गुजारने वाले, वो जैसे ही इस दुनिया से अगले जहान में जाते हैं ना, वहां जाकर के, वो पहले भी क्लास में ये लफ्ज आया था जहन में, फिर दोबारा से बोलेंगे, मतलब तो मैं पंजाबी मैं हूं भी नहीं और ना मुझे पंजाबी आती है, लेकिन अल्लाह ताला ने माशाल्लाह शेख जो है वो पंजाब से दिए हैं, तो उनकी बरकत से बहुत कुछ सुनते रहते हैं फिर, ठीक है ना। तो इस वजह से, और बचपन में भी खैर वो स्कूल जिस जहाँ जाते थे तो वहां पर भी पंजाब के बहुत सारे बच्चे होते थे, वो कराची में लेकिन था वो यानी पाकिस्तानी या पाँच का स्कूल था वो, यानी आम सा स्कूल था लेकिन वो कंट्रोल में था, तो वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होते थे, तो उस जमाने से पंजाबी के काफी अल्फाज जो है वो चढ़ गए हैं जुबान के ऊपर। तो ये आज ये कहना चाह रहा था कि बस ये जो मानने वाले लोग होते हैं ना, वो इस दुनिया से अगली दुनिया में ट्रांसफर होते हैं और फिर उनके बल्ले ही बल्ले, मजे ही मजे, ऐशे ही ऐशे, राइट, ऐशे कब्र में जाते ही ऐशे शुरू हो जाती हैं उनकी, कब्र में जाते ही ऐशे शुरू हो जाती हैं उनकी, राइट। ये कब्र में जाकर के जो है ना, फिर वो नहीं होता कि जी बस लेटे पड़े हुए हैं, कुछ करने को नहीं है, बोर हो रहे हैं और जो है वो अंधेरे से डर रहे हैं और जो है वो बिच्छुओं को डॉच कर रहे हैं, कॉकरोचेस को डॉच कर रहे हैं, इधर से ये कॉकरोच आ रहा था उधर से डॉच कर रहे हो, किसी तरह से कॉकरोच से मैं बच जाऊं, उधर से एक सांप निकल आया उससे बचने की कोशिश कर रहे हो किसी तरीके से सांप से बच जाऊं, फिर उसके बाद गर्मी लगनी शुरू हो गई, अगर समर्स का जमाना था तो गर्मी लगनी शुरू हो गई कब्र के अंदर, फिर उसके बाद विंटर का जमाना आया तो जो है वो ठंडक लगनी शुरू हो गई कब्र के अंदर। नहीं, कुछ भी नहीं होता ऐसा, बल्कि तन्हाई भी नहीं होती, तन्हाई भी नहीं होती कब्र के अंदर जो है, ये पूरा का पूरा एक आलम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, आलम बरजख, और वहां पर जो है ना, वहां पर अल्लाह के पसंदीदा बंदों के साथ, बंदियों के साथ इनका उठना बैठना, इनकी मजालिस होती है वहां पर, है ना, इनके मजे ही मजे, ठीक है ना। आखिरत तो आएगी मजीद पता नहीं लाखों साल के बाद या हजारों साल के बाद, वो जो आखिरत का मैदान होगा, और जन्नत आएगी वो तो पता नहीं कब आएगी। इनके मजे आंख बंद होने के फौरन बाद शुरू हो जाते हैं, आंख बंद होने के फौरन बाद, राइट। तो ये है हमारा परवरदिगार, इसने हमारे साथ ऐसा इंतजाम करके रखा हुआ है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। हम अल्लाह ताला की बजटिंग की फिक्र ना किया करें कि वो इतना दे देंगे तो फिर पता नहीं कमी ना पड़ जाए अल्लाह ताला को, कहीं ऐसा ना हो कि अगर कवर में ही सब कुछ दे दिया ना, इतना कुछ दे दिया ना, तो जन्नत में जो है ना वो शॉर्टेज पड़ जाएगी, जन्नत में नेमतों की शॉर्टेज हो जाएगी। तो अल्लाह ताला को ऐसा भी नहीं करना चाहिए, नऊज़ुबिल्लाह, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल इसकी परवाह ना करें। मसला सारा का सारा ये है कि हम इस दुनिया की जिंदगी को जो है ना ऐसा अपने ऊपर सवार करते हैं कि हम कब्र से बिल्कुल ही गाफिल हो जाते हैं, कब्र के मजों की तरफ हमारी नजर ही नहीं जा रही होती, जन्नत के मजों की तरफ हमारी नजर ही नहीं जा रही होती। इसी दुनिया में मजे कर लो, अच्छा अगर मजे नहीं मिल रहे तो सब कुछ खत्म हो गया, है ना, इस दुनिया के अंदर मामला खराब हो गया, सब कुछ ही खराब हो गया। ऐसा कोई थोड़ी है भाई, इस दुनिया के अंदर मजे भी कोई मजे नहीं, इस दुनिया के अंदर बुराई भी कोई बुराई नहीं, राइट, एज लॉन्ग एज अल्लाह ताला की मान के चल रहे हैं। फरमाया कि ये सामान मजकूर पानी और नबातात से था, और आगे हैवानात के जरिए से इंसान के मुनाफे और आसानियों का बयान है, ठीक है। यानी जमादात, पानी जमादात में से है, जमी हुई चीज पानी है ना, जब तक ग्रेविटेशनल पुल ना हो पानी अपनी जगह से हिल नहीं सकता, खुद से नहीं चल सकता पानी, कोई उसको पुश करेगा तो वो आगे चलेगा, या कोई उसको पुल करेगा, जैसे अर्थ की ग्रेविटी उसको पुल करेगी तब पानी अपनी जगह से हिलेगा। तो पानी क्या है? जमादात। नबातात क्या होती हैं? जो कि उनके अपने अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि वो ऊपर की तरफ भी ग्रो करती हैं, नीचे की तरफ भी ग्रो करती हैं, किसी को उनको पुश कर करके ग्रो नहीं करवाना होता, ठीक है। तो वो नबातात हो गई, और नबातात के बाद तीसरी जो अल्लाह ताला ने मखलूक रखी है उससे ज्यादा एडवांस नबातात से, वो क्या है? हैवानात, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ भी ग्रो कर सकती है, नीचे भी ग्रो करती है, साइडवेज भी मूव अराउंड कर सकती हैं, बल्कि अगर पर लगा दें तो फ्लाई भी कर सकती हैं। तो अब हैवानात की बात करिए अल्लाह ताला, ठीक है ना, कैसी तरतीब के अंदर बात हो रही है कि हैवानात के जरिए इंसान के मुनाफे और आसानियों का बयान है कि तुम्हारे लिए मवाशी में भी गौर करने का मौका है, ठीक है। वइन्न लकुम फिल अनआमि लइबरा, इबरत यानी यूज योर माइंड, अकल इस्तेमाल करो, गौर करो, इस डायरेक्शन में गौर करो, दूसरी डायरेक्शन में तो तुम करते ही रहते हो गौर, इस डायरेक्शन में भी तुम गौर करो, ठीक है, कि हैवानात के अंदर कैसे मुनाफे और आसानियां अल्लाह ताला ने रखी हैं कि हम तुमको उनके जौफ में की चीज, यानी जौफ जो उनके इनका मिडिल पोर्शन होता है, पेट जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर की चीज यानी दूध पीने को देते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें से और भी बहुत से फायदे हैं कि उनके बाल और ऊन तुम्हारे काम आती है, और नीज उनमें से बास को तुम खाते भी हो, जिनको अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया उनको तुम खाते भी हो, और उनमें जो बार बर्दारी के काबिल है उन पर कश्ती उन उन पर और कश्ती पर लदे लदे फिरते भी हो, ठीक है। ये अल्लाह ताला अपनी नेमतें इंसान को गिनवाते हैं, याद दिलाते हैं, एक जगह अल्लाह ताला यहां तक फरमाते हैं वह इन तउदू नेमत वाही ला तुहसुहा, कि तुम अगर तादाद करने की कोशिश करोगे ना, काउंट करने की कोशिश करोगे तो तुम शुमार ही नहीं कर सकते मेरी नेमत, अल्लाह ताला की नेमत, ठीक है। मारिफ और मसाइल शुरू कर लेते हैं, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ रहे हैं। ये खवातीन का सेशन जो है वो स्क्रीन टाइम में पड़ जाता है, चले कोई सवाल यहाँ पे नहीं आया हुआ, एक मिनट मैं इसको फिर से कैसे।
रिकॉर्डिंग स्टार्ट।
नन
سكرين تايم اوت بالبروف تمام سنی نہیں ہے. چلیں عارف و مسائل شروع کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں انسان کی فلاح دنیا و آخرت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی تعمیل میں اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھنے اور تمام انسانوں کے حقوق ادا کرنے سے بیان کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا, شروع کی جو 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 کتنی 10 آیات جو تھیں, 11 آیات جو تھیں, تو فلاح دنیا اور آخرت کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. آیات مذکورہ میں یعنی 12 سے لے کر 22 تک جو آیات ہیں, ان کے اندر اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور بنی نوع انسان کی تخلیق میں اس کے مظاہر خاص کا ذکر ہے, جس سے واضح ہو جائے کہ انسان جس کو عقل و شعور ہو وہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, جو اپنی عقل و شعور کو استعمال کرتا ہو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی راستہ اختیار کرے گا, اسے دور دور نہیں جا سکتا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ, تو اس فرماتے ہیں سلالہ بمعنی خلاصہ اور طین گیلی مٹی. ٹھیک ہے, تو سلالہ تم من طین, حضرت نے یہاں پہ ترجمہ جو ہے وہ خلاصے سے کیا ہے. خلاصہ جو ہے وہ, یعنی ہم نے آپ کو ترجمے میں جو بتایا تھا نا, وہ سلپری کا ترجمہ کیا تھا, سلپری کے لفظ سے سلالے کا ترجمہ کیا تھا, چنی ہوئی مٹی سے حضرت نے یہاں پہ ترجمہ کیا ہے, اور مٹی کے خلاصے یعنی غذا سے بنایا. ہو سکتا ہے بلکہ کچھ وہاں سے میں نے پڑھا تھا تو وہ غلط تو خیر اس کو نہیں کہتے, خلاصہ یعنی بیسیکلی اس کے اندر سے ایکسٹریکٹڈ ہے یہ. ٹھیک ہے, مٹی میں سے ایکسٹریکٹڈ ہے. تو تین ہی کا ترجمہ جو ہے وہ گیلی مٹی سے فرمایا, جس کے معنی یہ ہیں کہ زمین کے مٹی کے خاص اجزاء نکال کر اس سے انسان کو پیدا کیا گیا. اس کی اور تفصیل بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ دو طریقے سے مٹی سے پیدا کرنا فرماتے ہیں علماء کرام, ایک تو ہے ڈائریکٹلی اور دوسرا انڈائریکٹلی. اچھا کوشچن کو پوسٹ کر دیں آپ پہ ذرا. اچھا, انسان کی تخلیق کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی تخلیق اس مٹی کے خلاصے سے ہوئی, اس لیے ابتدائی تخلیق کو مٹی کی طرف منسوب کیا گیا. ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ پتلا بنایا گیا تھا, پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی گئی تھی. اس کے بعد ایک انسان کا نطفہ دوسرے انسان کی تخلیق کا سبب بنا. اگلی آیت میں اسی کا بیان ثم جعلناہ نطفتن سے فرمایا ہے, مطلب یہ ہے کہ ابتدائی تخلیق مٹی سے ہوئی, پھر آگے سلسلہ تخلیق اسی مٹی کے جزء لطیف یعنی نطفے سے جاری کر دی گئی. ٹھیک ہے, کل اس کے اوپر بات ہو چکی ہے. جمہور مفسرین نے آیت مذکورہ کی تفسیر یہی لکھی ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے جا سکتا ہے کہ سلالۃ من طین سے مراد بھی نطفہ انسانی ہو, کیونکہ وہ غذا سے پیدا ہوتا ہے اور غذائے انسانی مٹی سے بنتی ہے. ٹھیک ہے, واللہ اعلم. اچھا, اس پہ اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا. آگے چلتے ہیں کہ تخلیق انسانی کے 7 مدارج درجے یعنی سٹیجز. ٹھیک ہے, آیات مذکورہ میں انسان کی تخلیق کے 7 دور ذکر کیے گئے. سب سے پہلے سلالۃ من طین, یہ پہلا درجہ ہوا. دوسرے درجے میں نطفہ, تیسرے میں علقہ, چوتھے میں مضغہ, پانچویں میں عظام یعنی ہڈیاں, اور چھٹے دور میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانا, اور 7واں دور تکمیل تخلیق کا ہے یعنی روح کو, جب وہ خلقاً آخر بن جاتا ہے. پہلے جو ہے وہ ایک عام جانور جیسی اس کی فارم ہوتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ جب روح انسانی اس کے اندر پکوا دیتے ہیں تو وہ اشرف المخلوقات بن جاتا ہے, رائٹ, عبد بن جاتا ہے. اس سے پہلے وہ عبد والا سٹیٹس ایکوائر نہیں کیا ہوتا, بلکہ روح کے بعد وہ عبد بنتا ہے, اور عبد بننے کے ساتھ ساتھ اشرف المخلوقات بھی کا منصب بھی اس کو, لقب بھی اس کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 7 ادوار. ٹھیک ہے, عجیب بات, یعنی اللہ کی حکمتوں سے بھرپور بات ہی ہے
अजीब तो हमारे लिए, हमें सारी हिकमतें समझ में नहीं आती कि अल्लाह ताला ने जो फलाह के लिए सिफतें बयान फरमाई शुरू की 11 आयात के अंदर, वो कितनी थी? वो भी 7 थी, है ना, 7 औसाफ। नमाज के अंदर खुशू इख्तियार करते हैं और वादे की पाबंदी करते हैं और अमानतों का में अमानतों का ख्याल रखते हैं, राइट, और जो है वो शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं और जो है वो नमाजें पाबंदी से अदा करते हैं। कितनी बनती थी? ये 7 बनती थी। और यहाँ पर तख्लीक के अदवार ये भी 7, ठीक है ना। तो 7 का अल्लाह ताला ने जो 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 अदद इस्तेमाल किया है ना, इसके अंदर बड़ी गहराई है। इसी पर हजरत ने एक लतीफा अजीबा अज हजरत इब्ने अब्बास हजरत तारान भी यहाँ पे नकल किया, इसी 7 के अदद से रिलेटेड। तफसीर कुरतुबी में इस जगह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजरत तारान से इसी आयत से इस्तदलाल करके एक अजीब लतीफा शब कदर की तयन में नकल किया है। लतीफा से मुराद यहाँ पर जोक नहीं है, ठीक है, बल्कि लतीफा से मुराद लतीफ बात, यानी जिसको कहते हैं बारीक नुक्ता, राइट, उर्दू में कहते हैं ना बारीक नुक्ता, इन्होंने नुक्ता नुक्ता नहीं नुक्ता, बारीक, ठीक है, डेलिकेट पॉइंट। तो यहाँ लतीफा से मुराद जोक नहीं बल्कि इस किस्म की एक चीज, ठीक है, जिसके अंदर बड़ी वो बड़ी सेंसिटिव बात हो, बड़ी सेंसिटिव चीज हो, या बड़ी बारीक और बड़ी जो है वो डेलिकेट किस्म की चीज हो ना, उसको भी लतीफ या लतीफा कहते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो इंसान की रूह होती है तो उसके अंदर भी मशाइख ने फरमाया कि लताइफ होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं जो कि बड़ी पावर सेंटर्स होते हैं इस रूह के, बड़े सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर फिर वो जिक्र करने का अपने मुतवस्सिलीन को जिक्र करने के लिए कहते हैं, ताकि उन जिक्र उस जिक्र करने से फिर उनकी रूह के ऊपर जो है ना वो एक इफेक्ट पैदा होता है, ठीक है। तो वहां पर भी लतीफे का लफ्ज इस्तेमाल। अच्छा, तो एक अजीब लतीफा शब कदर की तयीन में नकल किया है, वो ये है कि हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा अकाबिर सहाबा के मजमे से सवाल किया कि शब कदर रमजान की कौन सी तारीख में है, ठीक है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने शब कदर के बारे में इरशाद फरमाया लेकिन वेगली, ठीक है ना, यानी ये बता दिया कि जी रमजानुल मुबारक के अंदर है, किसी और मकाम के ऊपर ये बता दिया कि रमजानुल मुबारक की जो है वो आखिरी 10 रातों में है, और किसी मकाम पर जो है वो ताक रातों का भी जिक्र कर दिया, लेकिन कौन सी वाली रात में है ये नहीं बताया, ठीक है ना, 21वीं में है, 23वीं में है, या 25वीं में है, 27वीं है, या 29वीं में, ठीक है। तो अब उसके ऊपर फिर मशाइख के अपने अपने जो है वो जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग्स थी या उनके जो एक्सपीरियंसेस थे उनकी बुनियाद पर किसी ने 21 की रात कहा, किसी ने जो है वो 23 की रात कहा। तो हजरत उमर फारूक रहता ने एक मरतबा सहाबा के मजमे से सवाल किया, तो सब ने जवाब में सिर्फ इतना कहा अल्लाहु आलम, कोई तयीन बयान नहीं की, ठीक है। सहाबा कराम जो है वो इंतहाई मुहताद भी थे, ये सीनियर सहाबा की बात हो रही है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मुहताद थे, और जब किसी चीज का उनको इल्म नहीं होता था तो वो डेंगे नहीं मारते थे हमारी तरह से, राइट, अजम्पशंस नहीं करते थे। अजम्पशंस वैसे ही इतनी खतरनाक चीज होती है, आपको जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको याद, अपना एक यानी वो बिल्कुल ही शुरू का वाकया, बिल्कुल नई नई जॉब ज्वाइन करी थी तो कुछ जो है ना वो गड़बड़ कर दी, गलती से कुछ करना चाह रहे थे, कुछ कर दिया, मशीन खराब हो गई, ठीक है ना, तो मैनेजर साहब ने बुला लिया, तो पूछने लगे, यानी बिल्कुल नया दौर था, शुरू शुरू की वो बात थी, तो काफी लोग उससे मुतासर हुए, क्योंकि उस कंटेनर उस कनेक्टर के ऊपर और लोग भी कनेक्ट होते थे। तो पूछा भाई कि क्यों किया आपने ऐसा, तो साजिद ने जवाब ये दिया कि सर आई एज्यूम दैट दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, आई एज्यूम्ड, ठीक है। तो जब मैंने वर्ड यूज किया ना एज्यूम्ड, एज्यूम्ड भी उसको पढ़ सकते हैं, ASSUME, ठीक है, तो मेरे मैनेजर ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया, कहने लगे यू नो व्हेन यू एज्यूम यू मेक एन एस आउट ऑफ यू एंड मी, राइट, ASS यानी खच्चर, अच्छी जुबान में उसको खच्चर ही बोल दें, ठीक है, यू मेक एन एस आउट ऑफ यू एंड मी, UME, ठीक है। तो अजम्पशंस जो होती है ना वो या तो बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस होनी चाहिए, कोई आपने तहकीक करी है, कोई आपके पास जो है वो दलाइल है, तो उसकी बुनियाद पर आप कुछ अजम्पशंस कर भी सकते हैं, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही अजम्पशन नहीं कर सकते, राइट, लेकिन पीछे कुछ ग्राउंडिंग होनी चाहिए ना, ऐसे ही बस जो है वो यानी कोई कोई वही नाउज बिल्ला गोया के आपके ऊपर उतरी थी, उसकी बुनियाद पर आपने कोई एज्यूम कर लिया, तो वो नुकसानदेह हो जाता है वो चीज, ठीक है। तो सहाबा कराम जो है ना वो हवा में एज्यूम नहीं करते थे, करते भी थे तो कोई दलील होती थी, उसकी बुनियाद पर कोई नतीजा खस कर लेते थे, ठीक है। तो इन हजरात के पास क्योंकि ऐसी कोई दलील नहीं थी, तो उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया, अल्लाहु आलम, अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानते हैं भाई कि कौन सी रात शब कदर है, ठीक है, कोई तायीन बयान नहीं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन उन सब में छोटे थे, तो उनसे खिताब फरमाया कि आप क्या कहते हैं, ठीक है। उमर फारूक रजान को यकीनन ये बात पता थी कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन जो है वो नबी अलैहि सलाम के चचा के बेटे, कजन, और इनके लिए नबी अलैहि सलाम ने खसूसी दुआएं फरमाई हैं, ये बड़ी खिदमत किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उनसे अलग से फिर यानी फिर खिताब किया उनसे, आप क्या फरमाते हैं? तो इब्ने अब्बास ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने आसमान 7 पैदा किए, जमीनें 7 पैदा की, इंसान की तखलीक 7 दर्जात में फरमाई, इंसान की गजा 7 चीजें बनाई, इसलिए मेरी समझ में तो ये आता है कि शब कदर 27वीं शब होगी, यानी जो आखिरी 10 रातें नबी रसूल ने फरमा दिया उनमें से जो 7वीं रात है, ठीक है ना, वो शब कदर होगी। फारूक आजम ने ये अजीब इस्तदलाल सुनकर अकाबिर साहब से फरमाया कि आपसे वो बात ना हो सकी जो इस लड़के ने की जिसके सर के बाल भी अभी मुकम्मल नहीं हुए, यानी सर के बाल तो छोटे बच्चे के ही मुकम्मल हो जाते हैं, ये एक मुहावरा है कि भाई अभी तो यानी इतना कम उम्र है कि इसकी तो अभी कहते हैं ना कि इसके तो अभी अबरू भी नहीं आई, इसके तो अभी दाढ़ी भी नहीं आई, है ना, तो इस तरह से इनकी छोटी उम्र की तारीफ करी। यह हदीस हदीस तवील इब्ने अभी शैबा की मुस्नद में है, यानी हदीस की किताब है मुस्नद अभी शैबा, इब्ने अभी शैबा, उसके अंदर ये नकल है। हजरत इब्ने अब्बास ने तख्लीक इंसानी के 7 दर्जात से मुराद वही लिया है जो इस आयत में है, ठीक है, और इंसान की गजा की 7 चीजें सूरह अबसा की आयत में है, وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا। इस आयत में 8 चीजें मजकूर हैं जिनमें पहली 7 इंसान की गजा है, और आखिरी यानी अब जो है ये जानवरों की गजा है। अब्बा जो है ना ये वो जो घास फूस वगैरह होता है उसको अब्बा कहते हैं, वो इंसान नहीं खाता, वो जानवर खाते हैं। तो शुरू की 7 चीजें जो हैं वो इंसान की गजाएं, तो हजरत इब्न अब्बास ने इस आयत से गजा के 7 यानी तादाद ली, और दूसरी 7 आसमान भी 7 होते हैं, जमीन के साथ होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन्होंने जो बात करी वो एक अकली और नकली दलील की बुनियाद पर बात करी, ठीक है। इस तरीके से कोई इंसान बात करे तो उसकी गुंजाइश होती है। अच्छा, अब आगे पढ़ने से पहले हम कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो देख लेते हैं, पुराने भी कुछ क्वेश्चन से उनको कहा था कि पूछ लेगा, क्लास में पूछ लेगा, तो वो हम देख लेते हैं। 1 मिनट। अच्छा, एक तो सवाल बड़ा आसान सा है कि इन्होंने लिखा कि जब कंफर्म नहीं है, यानी शबे कदर जब कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी 27 नाइट को सबसे ज्यादा फोकस क्यों करते हैं ताक रातों में से? तो आपके सवाल का जवाब तो इब्ने अब्बास की इस रवायत से ही मिल गया है ना, कि भाई बहुत सारी दूसरे दलाइल हैं जो कि इस तरफ पॉइंट करते हैं 27वीं शब की तरफ, ठीक है। तो अब जो हमारे जैसे कमजोर लोग होते हैं जिनसे जो है वो यानी 5 रातें भी नहीं जागा जाता, तो भाई हमें तो फिर बहाना चाहिए ना कि एक ही में निबट जाए, तो हम फिर उन दलाइल को इस्तेमाल करके 27वीं में ही जरा ज्यादा कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो लोग और हिम्मत वाले होते हैं तो फिर वो जो है ना वो कम से कम 5 ताक रातों के अंदर हिम्मत कर लेते हैं, ठीक है ना, वो फिर खाली 27 के ऊपर फोकस नहीं करते, और फिर और भी ज्यादा हिम्मत वाले जो होते हैं तो वो जो है वो तो फिर माशाल्लाह पूरी की पूरे आखिरी अशरे में हिम्मत करते हैं, और उनसे ज्यादा जो है वो पूरे रमजान की हर रात के अंदर हिम्मत करते हैं। तो भाई ये तो बड़ी बात हो गई जो कल हो रही थी कि जितना कम फ्रिक्शन होगी उतना ज्यादा यानी गाड़ी आगे चलेगी, और जितना हिम्मत होगी उतना ज्यादा एक्सीलेटर के ऊपर इंसान जान लगाएगा, है ना। तो ये जो इबादतें हैं शब कदर की इबादतें, रमजान की रातों की और दिन की इबादतें, ये तो ऐसा ही है जैसे कि आप जो है वो एक्सीलेटर के ऊपर ना पाँव दबा रहे हैं, खूब जोरदार किस्म की आप स्पीड दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बंदे बंदे की हिम्मत होते हैं ना, एक कमजोर सा बंदा तो पैर ही नहीं ज्यादा देर तक एक्सीलेटर के ऊपर रख सकता, उसके पैर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो बस यही मामला है। अच्छा, तकदीर, तकदीर की सवाल का सवाल शुरू कर दिया, तो वो अब बाद में देखते हैं। अभी आपका सवाल पढ़ने से भी पहले, जिसने ये ऊपर सवाल लिखा है ना, ये असल में दो तीन क्लासेस से पूछना चाह रही है, लेकिन टाइम खत्म हो जाता है, और तो हमने पहले कहा हुआ था कि आप क्लास पूछिए, तो इनका सवाल जो था ना वो थोड़ा सा यानी टॉपिक से तो हट करके है, लेकिन क्योंकि इस क्लास के अंदर अनरिलेटेड क्वेश्चंस भी हम एड्रेस कर लेते हैं, तो इस वजह से सवाल ये है कि कैन समवन बी अ नक्शबंदी एंड ए तबलीगी एट द सेम टाइम। कैन समवन यानी कोई मुसलमान जो है वो नक्शबंदी और तबलीगी एक साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें चूंकि कुछ तफसील थी तो उन्होंने कहा भी क्लास में पूछ लीजिएगा कि भाई पहली बात तो ये है ना कि जी नक्शबंदी और तबलीगी होती क्या चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। तो लफ्जी एतबार से इनको हम देखें तो नक्शबंदी जो है वो लोग कहलाते हैं या अपने आप को कहलवाते हैं कि जो के हजरत ख्वाजा नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ जिक्र अस्कार की तरतीब बनाई थी, अल्लाह का जिक्र करने की कुछ तरतीब, यानी ये नहीं कि नए जिक्र ईजाद किए थे बल्कि कुछ तरतीब कि भाई ऐसे करें, इतना करें, ये इस वक्त में करें, ये तरतीब होती है खाली, ठीक है। तो हजरत ख्वाजा नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जिक्र अस्कार की तरतीब बनाई थी ना, जो उस तरतीब को फॉलो करते हैं या उस तरतीब के ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं, तो वो ना फिर चूंकि हम नक्शबंदी तरीके से अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो इस निस्बत की वजह से जो है ना फिर नाम भी नक्शबंदी रख लिया, ठीक है। क्योंकि अरबी जुबान के अंदर भी और इवन दूसरी जुबानों के अंदर भी, कि जब किसी चीज से आपका कोई ताल्लुक हो जाता है तो आप ना यानी इवन नाम में भी उस चीज को शामिल कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान से ताल्लुक हो गया तो भी पाकिस्तानी, इंडिया से ताल्लुक हो गया तो हिंदुस्तानी, अरब से ताल्लुक है तो अरबी, राइट, मक्का से ताल्लुक है तो मक्कवी या मक्की, मदीना से ताल्लुक है तो मदनी, राइट। तो ये इसमें निस्बत कहते हैं इसको। उसी तरीके से फिका के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़े इज्तिहाद के को जो लोग फॉलो करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो सुन्नतों पे अमल करते हैं, है ना, कि नमाज पढ़ने के लिए जो है वो हाथ जो है वो नाक पर बांध रहे हैं, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिहाद है ना, कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम की सुन्नत ये थी कि कयाम की हालत में हाथ नाफ पर बांधा करते थे, ठीक है ना, और जब रुकू में जाते थे तो रफा यदैन के बगैर ही रुकू में जाते थे, ये सुन्नत थी नबी अलैहिस्सलाम सलाम। तो जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तरीक़ा इज्तिहाद को फॉलो करते हैं तो वो फिर हनफी कहलाते हैं अपने आप को, राइट। हनफी जो शाफी को फॉलो करते हैं वो शाफी कहलाते हैं, ठीक है। तो भाई नक्शबंदी कि ये हकीकत है लफ्ज नक्शबंदी, ठीक है। और अब ये लफ्ज जो है वो मजीद आपको क्या बताता है, मजीद ये बताता है कि जो जो लोग अपने इस्लाह नफ्स और तज़किया नफ्स, ठीक है, इसकी मेहनत में हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले, जिक्र अस्कार की तरतीब वाले सिलसिले से कनेक्टेड होते हैं तो वो भी नक्शबंदी ही कहलाते हैं, क्योंकि तज़किया नफ्स के लिए सबसे जो 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 क्या कहते हैं अहम नुस्खा होता है ना, वो अल्लाह ताला का जिक्र करना ही होता है। अल्लाह का जिक्र इंसान करेगा तो उससे उसके नफ्स का तज़किया होता है और उसके दिल का तस्फिया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो जिक्र करते हैं अपने नफ्स के तज़किये के लिए ना, तो उन वो लोग अपने आप को नक्शबंदी कहलाते हैं, ठीक है ना। ये कोई उम्मत के अंदर तफरीक नहीं होती कि जी आपने अपना एक अलग ग्रोह बना लिया, अपना एक ग्रुप बना लिया, ये सिर्फ निस्बत होती है, ठीक है ना, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल चीज है और हमेशा से ये हमारे दीन का हिस्सा रहा है और ये इंसान की तबीयत का और मिजाज का और इंसान के यानी दुनिया का भी हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये कोई तफरीक और ये पार्टीशनिंग और डिविजन ये सब नहीं होता ही है, ठीक है। तो تزکیہ نفس کے سلسلے میں بھی جو نقشبندی سلسلے کو فالو کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نقشبندی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی نقشبندی جو لفظ ہے یہ تزکیہ نفس کے ایک سلسلے کو ڈیفائن کو ڈونیٹ کر ڈینوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تزکیہ نفس کا ایک طریقہ, ایک سلسلہ, ٹھیک ہے نا, اس کو اس کے لیے نقشبندی کا لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب دوسرا لفظ ہے تبلیغی. تو تبلیغی کیا چیز ہوتی ہے؟ لفظی اعتبار سے تبلیغی کو اگر آپ دیکھیں تو تبلیغ کرنے والے کو تبلیغی کہتے ہیں, ہے نا. تبلیغ کا لفظ جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ لفظ نکلا بلغ یبلغ تبلیغن, بات پہنچانا. ٹھیک ہے, تو تبلیغ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ آپ تک جو بات پہنچی ہے آپ کے بڑوں سے, آپ کے ٹیچر سے, مشائخ سے, وہ بات جو ہے نا وہ آپ آگے بھی پہنچائیں, لوگوں کو بتائیں. ٹھیک ہے نا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے اس طرف مائل ہوں گے. آپ کا کام ہے بلغو, رائٹ, آگے پہنچا دینا, توفیق دینا تو اللہ کا کام ہے نا, آپ کا کام ہے آگے پہنچا دینا. ٹھیک ہے, تو جو یہ کام کرتا ہے اس کو جو ہے وہ آپ تبلیغی کہہ سکتے ہیں. یہ لفظی ترجمہ ہو گیا, لفظی مفہوم ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے نا, اب اصطلاحی مفہوم کیا ہے جو کہ دنیا کے اندر اس وقت سمجھا جاتا ہے لفظ تبلیغی سے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, دارالعلوم دیوبند سے ان کا تعلق تھا, اور وہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ انہوں نے محنت شروع کری ایک علاقے کے مسلمانوں کے اوپر تاکہ وہ دین کی طرف واپس آ جائیں. ان علاقے کے مسلمانوں میں بہت زیادہ شرک اور بدعتیں شروع ہو گئی تھیں, میواتی مسلمان میوت کے علاقے میں. ٹھیک ہے, انہوں نے جو ہے وہ بہت محنت شروع کری, تو یہ محنت جو ہے نا وہ چلتے 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 جو ہے نا وہ ایک باقاعدہ ایک فارمل شکل اختیار کر گئی, ایک فارمل شکل اختیار کر گئی, اور اس کا نام جو ہے نا وہ تبلیغی جماعت پڑ گیا, تبلیغی جماعت. ٹھیک ہے نا, اب یہ اصطلاحی طور پر اس خاص ترتیب کے اوپر تبلیغ کا جو کام کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے تبلیغی جماعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور انہی کو شارٹ فارم میں تبلیغی لوگ کہہ دیا جاتا ہے, تبلیغی لوگ. ٹھیک ہے نا, تو اب تبلیغی کون ہوتے ہیں کہ جو کہ دین کی بات جو ہے وہ آگے پہنچانے والا کام کر رہے ہوتے ہیں ایک خاص ترتیب کے اوپر جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شروع کروائی. اور نقشبندی کون ہوتے ہیں؟ جو کہ تزکیہ نفس کی محنت کر رہے ہوتے ہیں اس ترتیب کے اوپر جو حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے شروع کروائی. ٹھیک ہے نا, اب کیا یہ کیا کوئی مسلمان ایٹ دا سیم ٹائم تبلیغی اینڈ نقشبندی ہو سکتا ہے؟ آف کورس ہو سکتا ہے, بلکہ ہونا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے, تبلیغی اور نقشبندی دوت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ تبلیغی جماعت کی ترتیب کے اوپر لوگوں کو دین کی بات پہنچا رہا ہے تو بھائی اس کا اپنا تزکیہ نفس, اس کی بھی تو اس کو ضرورت ہے نا, اپنے تزکیہ نفس کی اور تصفیہ قلب کی تو اس کو ضرورت ہے نا. تو اپنا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب جو ہے وہ اگر کسی شیخ کے ساتھ جڑ کر کے اور ان کی سرپرستی میں کرے گا, ان کی گائیڈنس میں کرے گا, تو اس کے لیے تزکیہ نفس حاصل کرنا آسان ہو جائے گا, اور زیادہ یعنی زیادہ اچھے طریقے سے اپنا تزکیہ نفس کر سکے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جیسے پچھلی دو تین کلاسز کے اندر بات بھی ہوئی ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ وہ میسج میں لکھ کر کے بھی شیئر کیا ہے کہ اپنی میں کو مارنا, اپنے تکبر کا علاج کرنا جو ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے انسان کو بالآخر اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑتا ہے, اپنی اصلاح کروانی پڑتی ہے, تب کہیں جا کر کے میں جو ہے نا وہ 90% 95% انسان کے اندر سے ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر باقاعدہ کسی سلسلے کے اندر وہ تزکیہ نفس کے سلسلے میں نہ جڑے نا تو میں ختم نہیں ہوتی. کہنے کا مقصد کیا کہ فقط تبلیغی جماعت کی ترتیب میں جڑ کر کے اور کچھ اعمال کر کے اور کچھ آگے جو ہے وہ بات پہنچا کر کے میں کے مرنے والا کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, ہمارے بڑے مشائخ جو ہیں ان سے یہ بات منقول ہے کہ تبلیغی جماعت کی محنت سے انسان کی آفاقی اصلاح ہو جاتی. آفاقی کا مطلب بیرونی اصلاح, دین کے اوپر آ جاتا ہے, داڑھی رکھ لیتا ہے, شریعت کے مطابق جو ہے وہ اس کی لباس وغیرہ ہو جاتا ہے, گھر کے اندر بھی جو ہے وہ اچھی خاصی سنتیں وغیرہ رائج ہو کرنے کی کوشش کرتا ہے, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अंदर जो छुपे हुए रूहानी अमराज होते हैं ना, तकब्बुर, उजुब, गुस्सा, हिर्स, हसद, शहवत, राइट, ये जो है ना, ये सिर्फ किसी पढ़ने पढ़ाने वाली मेहनत या तबलीग की मेहनत, इससे ये छुपे हुए अमराज नहीं निकलते। ये छुपे हुए अमराज के लिए तो बकायदा वन ऑन वन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर इंगेज होना होता है, ठीक है, जो कि तसव्वुफ का सिलसिला या तज़किया नफ्स का सिलसिला कहलाता है, ठीक है ना। तो वो जो है वो नक्शबंदी सिलसिला इज वन ऑफ दोस, यानी वन ऑफ दोस मेथड्स, ठीक है ना। चिश्ती सिलसिला भी है उसके लिए, कादरिया सिलसिला भी उसके लिए है, सोहरवर्दिया सिलसिला भी उसके लिए ही है, ये सब जो है ना तज़किया नफ्स के सिलसिले, ठीक है ना। तो अंदर की जो इस्लाह होती है ना, वो तो उस तरीके से होती है। तो इस वजह से बेशक तबलीग के अंदर जो बंदा लगा हुआ है वो बहुत दीन का काम कर रहा है और ज़ाहरी तौर पर उसकी बहुत ज्यादा इस्लाह उससे हो जाती है, लेकिन बातनी इस्लाह के लिए उसको किसी ना किसी शेख के सामने अपने आप को सुपुर्द करना पड़ता है, और वो सिलसिला जो है वो नक्शबंदी, चाहे चिश्ती, कादरी और सोहरवर्दी, शाज़ली वगैरह, ये सिलसिले होते हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स एक बंदा जो है वो दोनों हो सकता है, बल्कि आइडियली स्पीकिंग उसको दोनों दोनों होना भी चाहिए, ठीक है, दीन की तबलीग के भी काम करे और जो है वो अपने तज़किया नफ्स के भी साथ साथ जो है उसका सिलसिला चलता रहे। आगे किसी ने लिखा था कि तकदीर क्या है, कहते हैं कि पैदाइश मौत का वक्त ऑलरेडी डिसाइडेड होता है अल्लाह की तरफ से, लेकिन जो इंसान दुनिया में अच्छी और बुरी, अच्छाई और बुराई करता है, इसका मामला क्या होगा। तकदीर की सबसे आसान और सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कुछ मुस्तकबिल में इंसान ने करना है या जो कुछ होना है वो सब का सब अल्लाह ताला के इल्म के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। अब अल्लाह ताला के इल्म में जो मौजूद है ना, अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया इस बात को कि उसने अपने इस इल्म को जो है वो लोहे महफूज के अंदर बाकायदा कलमबंद करवा दिया, लिखवा दिया, ठीक है ना। तो वो अल्लाह ताला का इल्म है, ठीक है। अब इंसान जो करता है ना, अल्लाह ताला का इल्म जो है वो उसको मजबूर नहीं करता। भाई अल्लाह ताला को इल्म है कि इसने क्या करना है, लेकिन इल्म होने का मतलब ये नहीं है कि अब इंसान को अल्लाह मजबूर कर रहे हैं कि तुम जो है वो नेकी का काम करो या तुम जो है वो बुराई का काम करो। नहीं, नेकी और बुराई का काम करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया हुआ है, तो वो जो करता है वो अपने इख्तियार से करता है, अल्लाह ताला का इल्म उसको फोर्स नहीं करता, ठीक है। अब देखें इसके ऊपर सवाल ये होता है, भाई अगर फोर्स नहीं करता तो फिर इल्म की क्या जरूरत थी, है ना। अगर फोर्स नहीं करता अल्लाह ताला तो फिर वो तकदीर के अंदर लिखवाने की क्या जरूरत थी। तो उसके ऊपर ये जवाब देते हैं कि भाई अल्लाह ताला का जो इल्म है ना, तो अगर आप ये इसको इस तरीके से देखें कि इंसान ने क्या करना है वो अल्लाह ताला को इल्म ना हो कि इंसान ने क्या करना है, नेकी का रास्ता इख्तियार करना है या बुराई का रास्ता इख्तियार करना है, अगर ये अल्लाह को पता ना हो तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला की जात के साथ नाउज बिल्ला ना वाकिफियत मंसूब हो रही है, और ना वाकिफियत के लिए एक और लफ्ज इस्तेमाल करें जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी बात, वो क्या है, नाकफियत के, ना वाकिफियत, इसी को तो जहालत कहते हैं, इसी को तो जहालत कहते हैं। तो क्या हम परवरदिगार के लिए जहालत को पसंद कर सकते हैं कि नाउज बिल्ला अल्लाह ताला को जी माजी का तो सब कुछ पता है और हाल का भी सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में क्या होना है ये अल्लाह को नहीं पता, ये अल्लाह को नहीं पता, ठीक है ना। भाई क्या होना है का मतलब खाली ये कोई थोड़ी होता है कि बारिश होनी है कि नहीं होनी, पहाड़ ने टूटना है कि नहीं कि टूट नहीं टूटना, आतिशफिशां ने फटना है कि नहीं फटना, राइट। मुस्तकबिल में होने के अंदर ये भी तो दाखिल है ना कि फलाने इंसान ने क्या करना है, फलाने औरत ने क्या करना है, फलानी मर्द ने क्या करना है, बच्चे ने क्या करना है, ये भी तो मुस्तकबिल के इल्म में दाखिल है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जी अल्लाह ताला को पहाड़ टूटने का तो पता है, बारिश होने का तो पता है, लेकिन अल्लाह ताला को ये नहीं पता कि उसके किस बंदे ने क्या करना है। भाई पता है अल्लाह ताला को, इल्म है अल्लाह ताला का, क्योंकि अल्लाह ताला का इल्म हर चीज पर मुहित है, माजी, हाल एंड मुस्तकबिल, ठीक है ना। तो यही चीज जो है ना वो तकदीर है, ठीक है। और जो अल्लाह ताला उस तकदीर को लिखवा दिया है ना, तो ये लिखवाने का कोई हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये लिखी हुई है तो भाई हमें क्या पता, लिखी हुई है, किसी को कुछ नहीं पता क्या चीज लिखी हुई है क्या चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो तकदीर के बारे में बस इतना ही काफी है। इससे आगे नबी अलैहिस्सलाम ने मना भी कर दिया, तुम इसकी इसकी तफसील में जाने की कोशिश ना करो, क्योंकि तुम्हारी अकल है छोटी सी और तकदीर है अल्लाह ताला का इल्म, और ये इतना वसी है, इतना बड़ा है कि तुम्हारी इतनी निक्की सी जो अकल है ना वो उसका इहाता ही नहीं कर सकती, ठीक है। तो तुम अगर तकदीर के अंदर घुसने की कोशिश करोगे, बस होगा ये, तुम्हें समझ में तो कुछ नहीं आने वाला है, शैतान आकर के उसको एक्सप्लॉइट करेगा और तुम्हें अल्लाह ताला के खिलाफ कर देगा, तुमसे कुछ ऐसे कलमात कहलवा देगा जिससे तुम्हारा ईमान खत्म हो जाएगा, समझ में तुम्हें कुछ फिर भी नहीं आना है, क्योंकि तुम्हारी अकल है ही इतनी छोटी सी, ठीक है ना भाई। अल्लाह वो क्या कौल हमारे मशाइख नकल करते हैं, गालिबन हजरत मुजद्दद अल-फिसाली रहमतुल्लाह अलैह का या हजरत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह का, कि अकल वो है जो अल्लाह तक पहुंचाए, अकल वो है जो अल्लाह तक पहुंचाए, यानी अल्लाह का रास्ता दिखा दे कि हाँ भाई एक अल्लाह है, ये है इंसान या ये है अकल कहलाने के काबिल, लेकिन अल्लाह वो है जो अकल में ना आए, अल्लाह वो है जो अकल में ना आए, यानी जो हमारी अकल में सिमा गया वो अल्लाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो कि हमारे अकल में आ जाए, अल्लाह तो हमारी अकल से बियॉन्ड चीज है, राइट। तो जब जिस तरह अल्लाह हमारी अकल में नहीं आता आ सकता ना, अल्लाह ताला की जात और अल्लाह ताला की जो है ना वो ये जो हिकमतें हैं ये भी हमारे अकल के अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। कल के पैकर हैं, बंदे नेक हैं, मेहरबान आप मेहरबान हो आप पर फिक्र। 27 रमजान को तो कुरान भी नाजिल हुआ था ना, तो इसलिए भी अहमियत है इस बात की। 27 रमजान को कुरान नाजिल हुआ था? नहीं, ये कोई नहीं है भाई, जो लैलतुल कदर थी उसमें कुरान नाजिल हुआ है ना। तो बात यहाँ पर सारी ये हो रही थी कि लैलतुल कदर कौन सी है ना, ये आपने अलग अलग चीजों को जो कर दिया ना, ये ऐसा नहीं है कि 27 को नाजिल हुआ था। नहीं भाई, 27 को नाजिल नहीं हुआ था, जो भी लैलतुल कदर थी उसमें नाजिल हुआ था। अब वो 27 थी तो 27 जो है वो सबसे अहम रात हो गई, अगर वो 23वीं रात थी तो 23वीं रात सबसे यानी लैलतुल कदर हो गई, ठीक है। अच्छा, क्या वालिदैन की मोहब्बत में फर्क होता है जो वो अपने बच्चों से करते हैं, यानी क्या हर एक बच्चे से एक जैसी मोहब्बत होती है उनको? वालिदैन को हर बच्चे से एक जैसी मोहब्बत होती है? एक चीज होती है मोहब्बत और एक चीज होती है शफकत, ठीक है। तो शफकत और मोहब्बत जो है ना, ये यानी इनके दरमियान जो निस्बत है वो, यानी काफी चीजें इनके अंदर कॉमन भी हैं और कुछ चीजें इनके अंदर अनकॉमन भी हैं, यानी कुछ चीजें हैं जो कि शफकत के अंदर हैं लेकिन मोहब्बत में नहीं, मोहब्बत में है जो शफकत में नहीं, ठीक है। तो इस तरह की भी रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान। तो वालिदैन के बारे में आप ये तो कह सकते हैं कि उनको अपने तमाम बच्चों से शफकत बराबर होती है, ठीक है। लेकिन जो मोहब्बत का जज्बा है ना, ये मोहब्बत का जज्बा है ना, ये चंद चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे पीछे भी बात हो चुकी है शुरू की क्लासेस में कि मोहब्बत का ताल्लुक जो होता है ना वो नफे के साथ होता है, या किसी जो है वो क्वालिटी के साथ होता है, किसी ऐसी चीज से होता है कि जो कि आपको फायदा मंद नजर आ रही हो, फायदा पहुंचा रही हो, कोई कोई एक्सेप्शनल चीज हो, उसका उससे फिर मोहब्बत का ताल्लुक होता है, ठीक है। तो इस वजह से मोहब्बत का जो जज्बा है ना ये थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, इवन वालदैन के अंदर भी, ठीक है ना। कि कोई औलाद जो होती है वो या तो ज्यादा फरमा बरदार होती है, ज्यादा जो है वो यानी बा अदब बा तमीज होती है, ठीक है ना, या कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा सलाहियतों वाली होती है, तो माँ बाप की जो है ना वो मोहब्बत उसके लिए थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। और दूसरी कोई औलाद होती है वो बात नहीं मानती है, या वो जो है वो इनको इतना अदब नहीं करती वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से उनकी तरफ से मोहब्बत थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है ना। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, राइट, वो याकूब अलैहिस्सलाम के सारे ही बेटे थे ना 12, राइट। तो 12 में से सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, क्योंकि کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, رائٹ, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنی خاص ولایت خاصہ کے لیے پسند کیا ہوا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی طرف ان کی زیادہ توجہ تھی, زیادہ محبت تھی, ٹھیک ہے, لیکن شفقت ان کی سارے بیٹوں کے ساتھ ہے نا, سارے بیٹوں کے ساتھ تھا نا وہ, بھائی تم نے غلطی کری ہے, میں تمہارے لیے استغفار کروں گا, میں تو تم لوگوں کو جو ہے نقصان نہ ہو, رائٹ. جو ان کے بیٹے تھے مصر میں جب جا رہے تھے عزیز مصر سے اپنی غلہ لینے کے لیے, تو باپ نے ان سے کہا کہ تم سب ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, کیونکہ تم جب اتنے سارے بھائی ایک جیسے, تمہاری شکل بھی بھائیوں کی وجہ سے ایک جیسی ہوتی ہے, جب ایک ساتھ داخل ہوگے نا تو لوگ دیکھیں گے تو وہ تم سے حسد کریں گے اور تمہیں نقصان ہوگا, تو تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. یہ کیا تھی؟ یہ باپ کی شفقت تھی جو کہ سارے بیٹوں کے ساتھ, حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جو بیٹے ہیں انہوں نے یوسف کو مجھ سے جدا کیا ہوا ہے. یہ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ میرے بیٹوں کی سازش تھی یوسف کو مجھ سے جدا کرنے کی, لیکن شفقت پھر بھی رہی اپنے بیٹوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح سے ان کی معافی بھی فوراً قبول کر لی. لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک الگ ہی قسم کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے. تو آپ کے سوال کا یہ جواب ہوگا کہ محبت ہوتی ہے اوپر نیچے, چینج ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اولاد کو پھر اپنا دل خراب نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری اولاد جس کے ساتھ ماں باپ کی طرح زیادہ محبت نظر آ رہی ہے نا, ان کے ساتھ حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ غلط بات ہے. بھائی محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ کرنے والے کے اوپر, اس کرنے والے کا اس پر قابو بھی نہیں ہوتا, محبت کے اوپر قابو نہیں ہوتا. محبت اصل معنوں میں جو محبت ہوتی ہے نا, یہ دل کی چیز ہوتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے, رائٹ. تو اب کسی کو آپ کسی ایسے چیز کے اوپر کیسے الزام دے سکتے ہیں جس کے اوپر اس کا خود قابو نہ ہو, ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھیں نا, ہر بیوی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شفقت بھی تھی, ہر بیوی کے ساتھ محبت بھی تھی, ہر بیوی کے ساتھ جو ہے وہ برابری کا معاملہ بھی کرتے تھے, لیکن ایک بیوی کے ساتھ زیادہ محبت تھی, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہے نا, یعنی اس وقت جو زندہ بیویاں موجود تھیں, موجود بیویاں, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو انتقال ہو چکا تھا, ان کے ساتھ تو ایک الگ ہی معاملہ تھا نا, اکیلے والا معاملہ, بالکل یونیک معاملہ, لیکن باقی جو اس وقت کی موجودہ بیویاں تھیں ان میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادہ محبت تھی. اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ کیونکہ ان کے باپ جو تھے وہ صدیق اکبر تھے, اور عائشہ جو تھیں ان کی ایسی کوالٹیز تھیں ان کے اندر جو کہ کسی کے اندر اتنی زیادہ نہیں تھی, رائٹ. خوبصورتی نہیں تھی ان کے اندر سب سے زیادہ, خوبصورتی میں تو ان کا نام آتا ہے, صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت, رائٹ, صفیہ بنت حیی, رائٹ, اور دوسری بھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑی خوبصورت قریش کی زبردست, لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر علم والی صلاحیت, رائٹ, ذہانت والی صلاحیت, پھر صدیق اکبر صلی اللہ تعالیٰ کی بیٹی والی بات, رائٹ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے, میں جن چیزوں میں برابری کر سکتا ہوں ان میں تو میں برابری کرتا ہوں, لیکن محبت جو دل کا معاملہ ہے نا, یہ اللہ میرے قابو میں نہیں ہے, اس کے اوپر آپ اس سے مواخذہ نہیں فرمائیے گا, ٹھیک ہے نا. تو بھائی اسی طریقے سے والدین کا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو اب اگر اولاد جو ہے وہ باپ سے ناراض ہو جائے گی کہ بھائی ان بھائی کے ساتھ کیوں ان کو زیادہ ہے, ان کے اوپر کیوں ان کی توجہ زیادہ نظر آتی ہے, تو پھر وہی والی غلطی کریں گے نا یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کری تھی, اور جب انہوں نے یہ غلطی کری تھی تو پھر سزا ملی نا ان کو, رائٹ. رہتی دنیا تک جو ہے وہ ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرما دیا, اور پھر ان کو بھی جو ہے وہ بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑی, اسی طریقے سے اس اولاد کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی, ٹھیک ہے. حضرت صاحب, جب انسان برائی کرنے لگتا ہے تو اللہ روکتے تو ہوں گے, لیکن انسان پھر بھی وہی کرتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ اللہ تعالیٰ مدد تو فرماتے ہیں, یعنی ایسے اسباب بناتے ہیں کہ یہ انسان ہے وہ برائی سے رک جائے, لیکن وہ بھی تولا ہوتا ہے, انسان بھی تولا رہتا ہے نا برائی کے اوپر, اور پھر وہ اللہ کی طرف سے جو مدد والے اسباب ہوتے ہیں نا وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا, بلکہ جو ہے وہ برائی کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ کرتا ہے. تو قصور جو ہے وہ انسان ہی کا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں ہوتا. इस पर माँ बाप को गुनाह होता है कि वो औलाद में फर्क करें। नहीं, माँ बाप को गुनाह जो है ना वो मोहब्बत में फर्क करने के ऊपर नहीं होता, ठीक है ना, बल्कि माँ बाप को गुनाह उस वक्त होता है जब वो औलाद के दरमियान जो 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 तकसीम करते हैं ना चीजों को, ठीक है ना, यानी जो 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 जिसको फिजिकल तकसीम भी कह सकते हैं, ठीक है ना, उस तकसीम के अंदर जो है वो इम्तियाजी सलूक रवा रखते हैं, ठीक है। जैसे किसी के लिए चीज ला करके दी तो नबी अलैहिस्सलाम ने यानी हमें तालीम दी कि बच्चों के दरमियान यानी ज्यादा कम का मामला ना करो, ठीक है, कि किसी को आपने दे दिया और किसी को जो है वो महरूम कर दिया और किसी के साथ कुछ कर दिया, किसी कुछ कर दिया, ऐसे ना करो, ठीक है। इससे जो है ना फिर वो औलाद यानी माँ बाप को गुनाह तो एक्चुअली नहीं, यानी गुनाह एक अलग चीज होती है ना, गुनाह तो एक बहुत ही एक्सट्रीम किस्म की चीज होती है जिसके ऊपर फिर पिटाई होती है, सजा मिलती है, ठीक है। तो गुनाह का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, ये होता है कि हाँ फिर औलाद के दिल में फिर एक कैफियत पैदा होती है, शैतान उसको एक्सप्लॉइट करता है जिसकी वजह से घर के अंदर जो है वो फसाद वगैरह होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो नुकसान हो जाता है ये। अलबत्ता ये भी बात याद रखनी चाहिए कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दूसरे वेरिएबल्स भी शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर कि आपका एक बच्चा जो है वो 15 साल का है और दूसरा बच्चा जो है वो 5 साल का है, ठीक है ना। तो अब 15 साल के बच्चे को जो है ना वो आपने जो है वो यानी कोई कोई लिबास खरीद करके दिया, तो वो लिबास जो था वो उसमें इतना जो है ना वो यानी शोख किस्म का लिबास नहीं था, है ना, जबकि 5 साल के बच्चे को आपने लिबास खरीद करके दिया, बड़ा शोख किस्म का, बड़ा अच्छा कलर कलरफुल और बड़ा हुआ, है ना। तो अब कोई कहे कि भाई ये आपने बच्चों के दरमियान जो है ना वो फर्क कर दिया, 15 साल वाले को तो ऐसा नहीं दिया, 5 साल वाले को ऐसा दिया, भाई उनको ये कहा जाएगा कि हाँ भाई जाहिरी तौर पर तो डिफरेंस है कि उसको मैंने ऐसा लिबास नहीं दिया, इसको मैंने ऐसा लिबास दिया, लेकिन उसको जो लिबास दिया है वो उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही लिबास है उसके लिए, और इसको जो लिबास दिया है वो इसकी उम्र के लिहाज से सही है। तो उम्र के जो वेरिएबल है ना वो भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा कि इसको क्या चीज दी जाएगी, उसको क्या चीज दी जाएगी, है ना। उसी तरीके से रवैयों में भी मुख्तलिफ होता है, बड़ा जो होता है उसको उसके साथ थोड़ी सी डांट डपट भी हो रही होती है, सख्ती भी हो रही होती है, और छोटा जो है ना वो उसी किस्म की कोई हरकत करता है तो कहते हैं भाई ये तो छोटा है इसकी उम्र देखो, है ना, उसको जो है वो इग्नोर कर रहे होते हैं। यानी करना तो नहीं चाहिए ज्यादा इग्नोर, वो भी इसकी आदतें बिगड़ जाएंगी, वो भी बात बहुत अहम है, आदतें बिगाड़नी नहीं है, लेकिन फिर भी ये छोटे के साथ जो है वो ज्यादा एक नरमी वाला मामला होता है, ठीक है ना। तो भाई मामले में डिफरेंस हो गया ना 16 साल के बच्चे में और 5 साल के बच्चे में, लेकिन ये डिफरेंस जो है ये अकॉर्डिंग टू दैट एज और अकॉर्डिंग टू द यानी समझ के हिसाब से ये डिफरेंस है ना, ठीक है। तो इसी वजह से ना ये बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स नहीं चलती इन मामला में, है ना, इक्वल 2 + 2 = 4 वाला मामला नहीं चलता, बल्कि 2 के अंदर और भी बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, उधर 2 के अंदर और भी बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, इन सबको कंसिडर करना पड़ता है। Isn't it also that many तबलीगी उलमा और also नक्शबंदी मशायख? Yes, absolutely. बहुत सारे तबलीगी उलमा हैं जो कि मशायख से जो है वो बैत नक्शबंदी हैं, कुछ जो है वो चिश्ती सिलसिले के साथ बैठे, किसी शेर के साथ बैठे हैं और कोई, ठीक है। हमारे हजरत के बहुत सारे खुलफा हैं जो कि प्योरली तबलीग का काम करते हैं, बल्कि हजरत के सीनियर मोस्ट खुलफा में एक हैं हजरत प्रोफेसर डॉक्टर सलीम साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाहौर के अंदर वो प्रोफेसर थे, रिटायर हुए हैं वहां से, ठीक है। तो वो तो यानी रायवंड के जो इज्तिमा होता है उसके अंदर मेजर इंतजाम करने वालों में से, पूरा जो साउंड सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सिस्टम होता था सारा उनके हाथ में होता था, वो पूरे रायवंड इज्तिमा के, और वो हजरत के अजल खुलाफा में से। उसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे हैं और बाकी मशायख के यहाँ भी ऐसा ही है, ठीक है। बहरहाल इसमें और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, तो किसी को अगर कोई और सवाल पूछना हो तो वो अलग से भी पूछ सकता है। बच्चों में तकसीम में, ये दूसरे सेशन में सवाल है कि बच्चों में तकसीम में कमी बेशी करने की बाज दफा कुछ वजह होती है जो बच्चों के लिए बेहतरी होती है, उस लिए करना तो भी गुनाह होगा। भाई पहली बात तो हमने आपको बता दी कि गुनाह तो वालिदैन का मामला ऐसा होता नहीं है कि उनको इतनी छोटी छोटी बातों के बाद गुनाह होना शुरू हो जाए, ठीक है। भाई वालिदैन का बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा हक होता है, तो ऐसा नहीं होता कि कोई तकसीम के अंदर कुछ ऊंच नीच हो जाए और वालदैन साहब को गुनाह मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं भाई, इतना हक है कि अगर ऊंच नीच हो भी जाती है, गलती हो भी जाती है, तो वालदैन का हक जो है वो गालिब आ जाता है। ठीक है ना, वालदैन को गुनाह उस वक्त होता है जब वो औलाद को शरीयत और सुन्नत के खिलाफ चलाते, शरीयत और सुन्नत के खिलाफ उनका जहन बनाते हैं, उनसे जो है वो गुनाह का काम करवाते हैं, राइट। उस वक्त वालिदैन को गुनाह होता है, 100% होता है, बल्कि 200% होता है, और इस गुनाह के ऊपर उनकी दुनिया और आखिरत दोनों में पकड़ होती है जब बच्चों को गुनाह के रास्ते के ऊपर डालते हैं। कर लो कुछ नहीं होता, झूठ बोल दो या सुन्नत को तर्क कर दो और खिलाफ शरीयत काम कर लो, पर्दा ना करो, टीवी देखो, है ना, और इस किस्म, इसके ऊपर वालदैन को गुनाह होता है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऊंच नीच होने के ऊपर ये ऐसा मामला नहीं है कि उनको गुनाह होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि हाँ, अभी आपको ये बात समझाई है ना कि भाई रीजन होते हैं ना कि आप उसी किसी को जो है वो ऐसी चीज दे रहे हैं, किसी को वैसी चीज दे रहे हैं, वो तो डिपेंडिंग ऑन देयर एज, डिपेंडिंग ऑन देयर यानी उनकी जो सलाहियतें हैं, उनके जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर वालदैन जो है वो अपना इज्तिहाद करते हैं। ये भी इज्तिहाद है घर के लेवल के ऊपर कि किस बच्चे को मैंने क्या चीज देनी है, किस बच्चे को मैंने क्या चीज देनी है, ठीक है। When a mother takes her daughter for granted, with whom she stays, compared to her other kids who stay away from her, how should the daughter deal with this? For granted, जो लेने वाला मामला होता है ना, तो उसमें एक ये भी यानी डॉटर को सोचना चाहिए कि यानी ये एक एक नेचुरल यानी तभी बात है, नेचुरल बात है कि जो दूर होते हैं वो जरा ज्यादा याद आते हैं और उनके साथ जो है ना वो एक मामला होता है, जबकि जो घर की मुर्गी तो वो दाल बराबर, राइट। तो घर के अंदर जो बेटी बैठी हुई है तो उसको जो है वो थोड़ा सा ऐसे ले रहे होते हैं कि हाँ भाई ये तो घर में ही है और ये तो हर वक्त ही सामने होती है, तो एक ह्यूमन नेचर भी इसके अंदर गालिब आती है, ठीक है। तो अब ये भी एक है कि भाई वो इस वजह से कर रहे हैं ये वाला काम, ठीक है। तो आप भी जो है ना यानी डॉटर भी जो है वो भी इतना यानी सेंसिटिव ना बने और थोड़ा उनको भी जो है ना वो लीवे दें कि हाँ भाई दिस इज आवर इज। अच्छा, अब अगर वो यानी जुल्म भी कर रहे हैं, यानी वाकई यानी बहुत ही ज्यादा जो है वो फॉर ग्रांटेड देना शुरू हो गए, हत्ता कि आपने किसी अहले इल्म से भी मशवरा भी कर लिया जिसको कि आपके घर के हालात का पता है और उसके बाद वो आपको अच्छा मशवरा देने के काबिल है, ऐसा शख्स या ऐसी ऐसी खातून जो है, और उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हाँ जी वाकई अम्मी जो है ना ये गलत कर रही है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है ना बेटी को ये सोचना चाहिए कि भाई बेशक गलत कर रही है लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि वह बिल वालिदैन एहसान, ठीक है ना। एहसान का जो हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है ना, एहसान का लफ्ज बता रहा है कि एहसान उस शख्स के साथ किया जाता है जो कि गलत कर रहा हो और वो डिजर्व ना करता हो अच्छाई, उसके ऊपर एहसान होता है, राइट। जब कोई अच्छा कर रहा है तब आप उसके साथ जब अच्छा करते हैं ना उसको एहसान नहीं कहते, उसको अदल कहते हैं, उसको इंसाफ कहते हैं। अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया है, ठीक है। तो यानी अगर वो गलत भी कर रहे हैं फिर भी उनके साथ अच्छा करो, ठीक है ना। सो मच सो कि अगर वो आपको गुनाह की तरफ भी पुश कर रहे हैं, आप गुनाह की तरफ जा तो नहीं सकते लेकिन आप उनके साथ बदतमीजी फिर भी नहीं कर सकते, राइट। तो वालिदैन के हुकूक अल्लाह ताला ने अपने अपने हक के बाद वालिदैन का हक रखा है, ठीक है ना। और इसका मतलब ये नहीं है कि वालिदैन के हक की वजह से अल्लाह का हक मारना शुरू हो जाए यानी गुनाह करना शुरू हो जाए, ये नहीं है इसका मतलब। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि वालिदैन के साथ अपने कंधों को झुका करके रखना, आवाज को पस करके रखना, राइट। कुरान अज़ीम शान के अंदर सूरह बनी इसराइल, इसके अंदर वालिदैन के हुकूक के बारे में अल्लाह ताला के अहकाम है, उसकी तफसीर उठा करके हमें देखनी चाहिए, ठीक है। तो बस ये है कि भाई ठीक है, अगर वो वाकई आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि यानी अपने ऊपर मेहनत करें, ऐसे सिलसिले के साथ जुड़े हैं कि जहाँ पर के अच्छे लोग आपको एडवाइस करने वाले हों, اور اپنے تحمل کے اوپر ذرا محنت کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف زیادہ توجہ کرنا شروع کریں، تاکہ آپ کے لیے ان کی اس غلطیوں کو جو ہے نا وہ اچھے سے ریسپونڈ کرنا آسان ہو جائے. ٹھیک ہے. مدر، اچھا والدین جب بیٹے کے پاس رہتے ہیں تو خیال رکھنے، ماشاءاللہ یہ وہی سارا دوسرا ہو گیا، کوئی بات نہیں، ابھی ہم ایک منٹ اور دے لیتے ہیں. جب بیٹے کے پاس رہتے ہیں تو خیال رکھنے کی ذمہ داری بیٹے بہو کی ہوتی ہے، اس صورت میں ان کے اور ان کے بچوں کو اگر زیادہ دیں تو باقی اولاد کو ناراض ہونے کا حق ہے کیا؟ اچھا، اکثر اولاد ناراض ہو جاتی ہے کہ انہیں زیادہ دیتے ہیں. بھائی جب آپ کسی ایک بیٹے کے پاس رہ رہے ہیں اور اس بیٹے اور بہو یعنی بیٹے کی جو بیوی ہے وہ آپ کا سارا خیال کر رہی ہے، تو اگر ان کو پھر آپ باقی اولاد جن کے پاس وہ نہیں رہ رہے ہیں، یعنی جو ان کے جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے نیڈس کو جو ہے وہ نہیں دیکھ رہی ہے، اور ان کی جو بڑھاپے کی وجہ سے جو ان کا ایک مزاج بھی بن جاتا ہے اس کو روز کے حساب سے نہیں سہ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی یہ والدین جو ہے نا پھر اس بچے اور بچے کے اولادوں کو جو ہے وہ زیادہ کیوں دے رہے ہیں. نہیں، یہ 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 لیجیٹیمیٹ جو ہے نا اعتراض نہیں. ٹھیک ہے بھئی، بوڑھے والدین کے ساتھ رہنا جو ہے نا یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، بے شک بہت زیادہ اجر ہے، لیکن یہ آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جب بھی جن کی تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے نا، یا جن کا مزاج نہیں بنا ہوا ہوتا اور جن کے اوپر کوئی سوشل پریشر بھی نہیں ہوتا، وہ تو آرام سے اٹھا کر کے پھر اولڈ پیپلز ہوم کے اندر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو آسان کام نہیں ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن مجید میں جو احکامات دیے ہیں اسی لیے دیے ہیں کیونکہ اس مشکل کام کو اللہ کا حکم سمجھ کر کے کرو، ہے نا، اللہ تعالیٰ سے بہترین جزا کی امید کے اندر یہ والا. I have heard of parents who take unfairness to extremes. Will they not be accountable? My friends would tell me about their parents. Ha, unfortunately, aise bhi masle hain duniya ke andar, aur aaj kal ke zamane mein aur bhi zyada bahut badh gaye hain ki parents jo hai na unme bhi jo hai na wo bahut zyada selfishness jo hai wo aa gayi hai. Aise bhi realities maujood hain. Theek hai na, aur jitna deen se duri wala mahol hota hai, حتیٰ کہ جو کفر کا ماحول ہوتا ہے، جو بالکل ہی دین سے دور ماحول ہے، تو وہاں پر اس قسم کی سیلفشنیس جو ہے وہ اس ایکسٹریم کو پہنچ جاتی ہے کہ اولاد کو جو ہے وہ بالکل ہی یعنی چھوڑ دیا، سڑک پہ چھوڑ کر کے چلے گئے، کہیں پہ ڈسٹ بن میں ڈال دیا، کچھ تو قتل ہی کر دیا. لیکن قتل کرنا ویسے سائیکیٹرک مسئلہ بھی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن ایسے بھی بہت سارے کیس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب تو یعنی ہے انفارچونیٹلی دنیا کے اندر ہمارے گناہوں کی وجہ سے بہت ہی بھیانک قسم کے موقعات موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی رول آف تھمب نہیں ہوتا کہ جی بس چونکہ بایولوجیکل پیرنٹس ہیں تو اب جو ہے وہ بایولوجیکل پیرنٹس جو ہے وہ اچھا ہی کر سکتے ہیں اور برا تو کر ہی نہیں سکتے، ایسا کوئی رول آف تھمب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، البتہ اللہ کا حکم جو ہے وہ رول آف تھمب ہے کہ ماں باپ جیسے بھی ہوں تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیر کمز اے سچویشن وین مدر میکس ہر سبلنگز گو اگینسٹ ہر. جی جی، اس طرح کے کیس آئی مینٹ ایز ان امنگ دیئر چلڈرن، ایز ان امنگ دیئر چلڈرن ٹو ٹیک انفیئر امنگ دیئر چلڈرن. ہاں ہاں، انفیئرنیس امنگ دیئر چلڈرن بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن خیر یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ڈیٹیلڈ اورینٹیڈ ہیں، اس میں دیکھنا پڑے گا کہ بھائی کیا ایگزیکٹلی ہو رہا ہے نا. کیونکہ دیکھیں یہ دس از ناٹ ون ڈائمینشنل نا کہ جی وہ ایکسٹریم. بھائی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جو چلڈرن ہے نا وہ بھی والدین کو بہت ہی غلط جج کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی جو ہے نا پھر اپنے دوستوں سے یا کسی اور جگہ سے انفلوئنس ہو کر کے وہ بھی اپنے والدین کے بارے میں جو ہے نا کچھ زیادہ ہی جو ہے نا وہ یعنی غلط کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں نا، جو کہ ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اٹ کین ورک ان بوتھ ویز ٹو، پیرنٹس بھی غلط کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد بھی غلط کر رہی ہے. چلے، بہت دیر ہو گئی ہے تو اور کام بھی ہیں، یہاں پہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں. آخر